नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली मित्र मोबाइल ऐप शुरू करने का फैसला किया। इस ऐप के माध्यम से दिल्लीवासी अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं, एक दो दिन में पानी घटने की उम्मीद जताई। दिल्ली पुलिस ने जन सुविधा और ड्यूटी अधिकारियों के लिए शिष्टाचार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। 6 सितंबर तक आम लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क। और दिल्ली प्रीमियर लीग में पुरानी दिल्ली सिक्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में आज दिल्ली मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से दिल्लीवासी अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह एकल विंडो सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी विभाग एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान 204.5 मीटर से ऊपर बढ़कर आज दोपहर 1 बजे तक 205.70 मीटर पर पहुंच गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जलस्तर में यह वृद्धि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यमुना बाजार के उस रिहायशी क्षेत्र का दौरा किया जहां यमुना नदी का पानी घुस गया है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने एक दो दिन में पानी घटने की उम्मीद भी जताई।
मैंने खुद यमुना जी का जो आखिरी छोर यहाँ से टच हो रहा है उसको भी देखा है। वहाँ पे पानी इस समय चढ़ा हुआ है, परंतु वो दिन पूरा होते होते ढल जाएगा, ऐसे हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है। पानी कम ही होने वाला है, इससे ज्यादा पानी अभी इसमें नहीं आएगा और पूरी तरीके से दिल्ली में स्थितियां कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार लोगों के साथ खड़ी है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्र सेविका समिति के गुरु पूजन और गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक ऐसी संस्कार धारा है जो नारी शक्ति के माध्यम से राष्ट्र का भविष्य प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, साधना और सेवा से ओतप्रोत यह संगठन राष्ट्र की वास्तविक रीढ़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संगठन ने पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार, समर्पण और त्याग की भावना को जीवित रखा है। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राष्ट्र सेविका समिति की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NSUT में अत्याधुनिक IoT और डिजिटल फैब्रिकेशन फैब प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी का शिक्षा विभाग और NSUT के शिक्षक और छात्र मिलकर नवीनीकरण और फैब्रिकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राजधानी के विद्यार्थी, शिक्षक और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश का इनोवेशन हब बनाना है। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह के निर्देश पर आज रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज RCS के कार्यालय में शिकायत पेटी, बायोमेट्रिक सिस्टम और CCTV कैमरे लगाए गए। एक रिपोर्ट।
श्री सिंह ने कहा कि इस प्रयास से शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी, साथ ही सुझावों के माध्यम से विभाग की कार्यशैली और बेहतर बनेगी। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई भी की और इस पहल का स्वागत करते हुए आवेदकों और शिकायतकर्ताओं ने श्री सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली के सहकारिता विभाग का उद्देश्य आम जन को पारदर्शी, जिम्मेदार और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
दिल्ली विधानसभा पहली बार अखिल भारतीय अध्यक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 24 अगस्त को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। विधानसभा कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सम्मेलन में विधायी प्रक्रियाओं, सहकारी संवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी अधिकारियों और जन सुविधा अधिकारियों के लिए शिष्टाचार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी ढंग से संभालने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है।
इस कार्यक्रम में दो दिवसीय कार्यशाला शामिल की गई है, जिनमें 700 ड्यूटी अधिकारियों के लिए दो बैच और 1300 एकीकृत जन सुविधा अधिकारियों के लिए तीन बैच हैं। यह प्रशिक्षण दिल्ली पुलिस के एल और ओ जोन के 350 अधिकारियों के साथ शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2000 पुलिस कर्मियों को 15 दिनों के भीतर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण व्यवहार संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें पेशेवर आचरण, कानूनी ज्ञान और प्रभावी जन सहभागिता के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स शामिल हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली भर के सभी पुलिस थानों के ड्यूटी अधिकारियों और एकीकृत जन सुविधा अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए दृष्टि पुनियानी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेस्टोरेंट, पब और भोजनालय अब सामान्य समय से अधिक समय तक खुले रहेंगे। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज एक फाइल को मंजूरी दे दी। श्री सक्सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संचालन समय में विस्तार से दिल्ली की रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निवेश आकर्षित होगा और शहर में अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। नए संचालन समय के अनुसार रेस्टोरेंट, पब, भोजनालय और ओपन एयर डाइनिंग कैफे रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही 3 सितारा होटलों के रेस्टोरेंट और बार को रात 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर तस्वीरों की प्रदर्शनी सितारे नमो भारत में का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में न्यूरोडाइवर्स फोटोग्राफरों द्वारा खींची गई तस्वीरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गोयल ने प्रतिभागी फोटोग्राफरों से बातचीत की। फोटोग्राफरों ने प्रदर्शित तस्वीरों से संबंधित अपने अपने दृष्टिकोण और अनुभवों को प्रबंध निदेशक से साझा किया। दृष्टिबाधित यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टेशनों पर समर्पित टैक्टाइल पाथ बनाए गए हैं। यह प्रदर्शनी अगले महीने की 6 तारीख तक आम जनता के लिए निःशुल्क रूप से खुली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
मंत्रिमंडल ने 8,307 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर ओडिशा में 6 मार्ग से जुड़े राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है।
6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए, कोलकाता से चेन्नई का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH-16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है, ऑब्वियसली वहाँ पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में रामेश्वर पे आके ये जुड़ेगा।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर आज भी बाधित रही। कई स्थगनों के बाद लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा हुई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की उपेक्षा की और इसरो को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। श्री बिरला ने बताया है कि अब संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 22 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान कर रहा है। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसका लक्ष्य भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन लाना है। विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान है जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करेगा। इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि यह विचारधारा की लड़ाई है और इसलिए वे अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। श्री रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि देश के कूटनीतिक प्रयासों को उसकी घरेलू जरूरतों और 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के साथ निकटता से जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। डॉ शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरानी दिल्ली 6 और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 10वें ओवर में 2 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। पुरानी दिल्ली 6 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज दोपहर को भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज 0.4% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 370 अंक बढ़कर 81,644 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 103 अंक बढ़कर 24,980 पर बंद हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली मित्र मोबाइल ऐप शुरू करने का फैसला किया। इस ऐप के माध्यम से दिल्लीवासी अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं, एक दो दिन में पानी घटने की उम्मीद जताई। दिल्ली पुलिस ने जन सुविधा और ड्यूटी अधिकारियों के लिए शिष्टाचार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। 6 सितंबर तक आम लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क। और दिल्ली प्रीमियर लीग में पुरानी दिल्ली सिक्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।